नमस्कार आदाब दोस्तों, पढ़ाई का बहुत सारा तनाव है, सवाल है लेकिन जवाब नहीं, परीक्षा का डर सता रहा है, दिल और दिमाग दोनों घबरा रहा है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज क्वेश्चन मार्क की पाठशाला में लगेगी मनोविज्ञान की क्लास। तो चलिए सुनते हैं अपने फेवरेट शिक्षक की जरूरी बातें।
मैं उमा सा रामदेव सिंह यादव साइंस कॉलेज व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आपको अभी बताना चाहती हूँ कि शिक्षण है क्या, सीखने के क्या महत्व है, उसकी क्या प्रकृति है, किस प्रकार सीखने की उपयोगिता है, तो ये आपको बता रही हूँ। तो प्रत्येक प्राणी में जन्म के समय से ही कुछ जन्मजात कार्य क्षमताएं विद्यमान रहती हैं, जिसके फलस्वरूप कुछ शारीरिक प्रतिक्रियाएं करता है, लेकिन वातावरण के साथ अभियोजन स्थापित करने के लिए उसे कुछ न कुछ सीखना पड़ता है। इस प्रकार जन्मोपरांत वातावरण के संपर्क से प्राणी अपनी जन्मजात शारीरिक कार्य क्षमता को आगे बढ़ाता है। इस क्रम में कुछ नई प्रतिक्रियाएं करना सीखता है, जिसे हम सीखना कहते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है, जिसकी अभिव्यक्ति व्यवहार के सहारे होती है। जैसे कोई बच्चा जब अंगीठी छूता है, उसका हाथ छूते ही जलने लगता है, इसलिए अपना हाथ वह तेजी से हटा लेता है और वह सीख जाता है कि आग से हाथ जलता है, इसलिए आग पर हाथ नहीं देना चाहिए। इस सीखने के फलस्वरूप वह आग को हाथ से नहीं छूता और उसके व्यवहार में परिमार्जन होता है। इस संबंध में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा है, सीखने के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वह अनुभव या अभ्यास पर आधारित होता है और उससे समायोजन में सहायता मिलती है। मॉर्गन एंड गिलीलैंड ने का कहना है कि सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप जीव के व्यवहार में कुछ परिमार्जन है, जो कम से कम कुछ समय के लिए भी जीव द्वारा धारण किया जाता है। इन सभी परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित बातें मिलती है। पहला, सीखने से व्यवहार में परिवर्तन होता है। जब व्यक्ति अंग्रेजी सीखता है और अपने अनुभव और विचार को अंग्रेजी में ही व्यक्त करता है, तो प्रत्यक्ष रूप से उसकी अभिव्यक्ति या व्यवहार में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है, सीखने की क्रिया में होने वाला परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी स्वरूप का होता है। स्थायी परिवर्तन के अभाव में शिक्षण क्रिया के फलस्वरूप अर्जित कौशल या योग्यता का उपयोग प्राणी भविष्य में नहीं कर सकता। अतः व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं, उनका स्थायी होना सीखने के लिए आवश्यक है। जैसे मान लिया जाए, जब हम किसी कला को जैसे पेंटिंग, टाइपिंग, संगीत करना सीखते हैं, तो उसे बार बार करते रहते हैं, यानी अभ्यास करते रहते हैं, क्योंकि ये कला सीखते सीखते याद हो जाती है, इसलिए भविष्य में इसका उपयोग कर अपने को समायोजित कर लेते हैं। प्रायः देखा जाता है कि सीखने के पीछे कोई न कोई उद्देश्य रहता है और अभिप्रेरणा भी काम करती है। व्यक्ति जिस उद्देश्य को पाने की कोशिश करता है, उसके लिए वह अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अतः जिस परिवर्तन से वह उद्देश्य को पा लेता है, उससे उसकी प्रेरणा को संतुष्टि मिलती है। हम विभिन्न विषयों को सीखते हैं और सीखने की विधियाँ भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। किसी में पेशियों और शरीर के विभिन्न अंगों का उपयोग होता है, तो किसी में भाषा तथा प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। इसके कई प्रकार हैं। पहला, कौशल सीखना। इसमें व्यक्ति विशिष्ट पेशीय क्रियाएं करना सीखता है, जैसे साइकिलिंग या मोटर चलाना। इस प्रकार के शिक्षण में हाथ पांव या शरीर के खास अंशों का संचालन कर विशेष क्रियात्मक दक्षता प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है शाब्दिक सीखना। इसमें भाषा यानी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कहानी, निबंध, ज्ञान विज्ञान सीखना तथा शब्दों और विभिन्न भाषाओं का अध्ययन शाब्दिक सीखना द्वारा प्राप्त होता है। थर्ड, प्रेक्षणात्मक सीखना। बच्चे प्रायः बड़े के व्यवहार को देखते हैं और उसे ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसका अनुकरण कर उस व्यवहार को दोहराते हैं, जिसे हम प्रेक्षणात्मक सीखना कहते हैं। खासकर बच्चे बड़ों के आचरण, स्वागत करने तथा उठने बैठने के तरीके को अनुकरण के सहारे सीखते हैं और अपनाते हैं। यह अपने पारिवारिक जीवन में बच्चे में प्रारंभिक भाषा विकास भी अनुकरण द्वारा करता है। नेक्स्ट, सयाने माँ, पापा, मामा आदि शब्दों को बार बार बच्चे के सामने दोहराते हैं और बच्चा उसका अनुकरण कर इसका उच्चारण करना सीख जाता है। नेक्स्ट है कॉग्निटिव थ्योरी, संज्ञानात्मक सीखना। यह सीखना वातावरण या परिस्थिति के संज्ञान पर निर्भर करता है। किसी भी परिस्थिति में हमें तरह तरह की सूचनाएं और अनुभव प्राप्त होते हैं। जब उन सूचनाओं और अनुभव में से कुछ को चुनकर उन्हें एक पैटर्न में सजाते हैं तो यह संज्ञानात्मक सीखना कहलाता है। जैसे आप किसी व्यक्ति को घर ढूंढते हुए उनके यहाँ पहुँचते हैं और बाद में पहुँचने की टेढ़ी मेढ़ी राहों का आपको ज्ञान हो जाता है और सहज ही आप किसी व्यक्ति को बतला भी देते हैं और आप उस स्थान तक पहुँचने में आसानी होती है। नेक्स्ट संप्रत्येक सीखना है। अपने दैनिक जीवन में व्यवहार तथा अंतक्रियाएं करने या चिंतन करने में संप्रतियों की भूमिका होती है। जैसे मान लीजिए आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं और कहते हैं 1 मीटर कपड़ा दो, तो आपको यह पता है कि 1 मीटर की लंबाई कितनी हो सकती है, इसको मीटर का संप्रत्यय कहेंगे। इसी तरह संप्रत्यय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी सहायता से विभिन्न वस्तुओं या घटनाओं में समानता का बोध होता है। अब है सीखने को प्रभावित करने वाले कितने कारक होते हैं। सीखने की क्रिया कई बातों या कारकों पर निर्भर करती है। इसकी जानकारी रहने पर हम बतला सकते हैं कि कोई किसी विषय को जल्द क्यों सीख जाता है और किसी को सीखने में अधिक दिक्कत क्यों होती है। साथ ही इन कारकों को जानकर यदि इनका समुचित उपयोग करें तो कोई भी विषय सीखना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। इन कारकों में कुछ तो ऐसे हैं जिनका संबंध सीखने वाले से है और कुछ का संबंध सीखे जाने वाले विषय, सीखने की विधि इत्यादि से है। अतः यहाँ पर हम निम्नलिखित कारकों का वर्णन करना पर्याप्त समझेंगे। पहला है बुद्धि। बुद्धि और शिक्षण क्षमता से बड़ा घनिष्ठ संबंध है, इसलिए सीखना काफी अंशों में इस बात पर निर्भर करता है कि सीखने वालों की बुद्धि कैसी है। यदि व्यक्ति तीव्र बुद्धि का हो तो वह विषय को अपेक्षाकृत जल्दी सीख लेता है। दूसरी ओर कम बुद्धि के व्यक्ति को समझने और सीखने में अधिक समय लगता है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य। किसी विषय को सीखने में वह स्वस्थ व्यक्ति की अपेक्षा अधिक कठिनाई का अनुभव करता है। स्वास्थ्य का अर्थ दोनों तरह के स्वास्थ्य है, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य। जब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से स्वस्थ रहता है तो वह अधिक कुशलता से किसी विषय को सीख लेता है। दूसरी ओर जब व्यक्ति बीमार या रोगी रहता है या मानसिक पीड़ा के शिकार होते हैं तो उसके सीखने की गति और क्षमता दोनों ही कम हो जाती है। नेक्स्ट है रुचि। जिस विषय को सीखने में व्यक्ति की रुचि रहती है उसे सीखते समय वह अधिक आनंद का अनुभव करता है। परिणामतः वह विषय उसके लिए आसान बन जाता है और वह शीघ्र सीख लेता है। विभिन्न व्यक्तियों की क्षमता विभिन्न विषयों और कार्यों में होती है। उनकी अभिक्षमता के अनुकूल कार्य या विषय मिलने पर व्यक्ति अपनी योग्यता का पूरा पूरा प्रदर्शन करता है और उसे शीघ्र ही कुशलतापूर्वक सीख जाता है। नेक्स्ट है विषय का स्वरूप। किसी विषय का सीखना काफी अंशों तक इस बात पर निर्भर करता है कि विषय का स्वरूप क्या है। जैसे सार्थक शब्दों की अपेक्षा निरर्थक पदों को सीखने में अधिक समय लगता है। नेक्स्ट है सीखने की विधि। किसी विषय को हम कई तरह से सीखते हैं। इसमें मुख्य विधियां हैं पार्ट एंड होल मेथड, स्पेस्ड एंड मास्ट मेथड, इंटेंशनल एंड इंसिडेंटल मेथड। तो किसी विषय को सीखने में इस बात का बड़ा महत्व है उसे जिस विधि से सीखा जाता है। जैसे कठिन विषय को पार्ट एंड मास्ट एंड इंसिडेंटल मेथड से सीखना अधिक सुविधाजनक होता है और व्यक्ति कम समय में विषय को सीख लेता है। उसी तरह आसान और छोटे विषय को होल स्पेस्ड एंड इंस्टेंशनल मेथड से सीखना अधिक लाभप्रद होता है। इन विधियों के संबंध विशेष रूप से चर्चा की गई है। नेक्स्ट है अभ्यास। थॉर्नडाइक के प्रयत्न और त्रुटि सिद्धांत का तो यह मुख्य आधार ही है। उसने सीखने का एक नियम बनाया जिसे अभ्यास नियम कहते हैं। अभ्यास नियम के अंतर्गत 2 उपनियम हैं, उपयोग नियम तथा अनुपयोग का नियम। उपयोग का नियम यह बतलाता है कि जिस संबंध का बार बार अभ्यास तथा उपयोग होता है उसे हम शीघ्र सीख जाते हैं। इसके विपरीत अनुपयोग नियम के अनुसार उस संबंध को हम नहीं सीख पाते जो उपयोग में नहीं आता है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को कोई क्रिया करने को बाध्य करती है। सीखने के लिए अभिप्रेरण का होना बड़ा ही उपयोगी होता है। जब कोई विशेष अभिप्रेरण व्यक्ति के अंदर काम करता है तो वह अधिक सक्रियता और उत्साह के साथ सीखने का अभ्यास करता है।
किसी भी तरह का प्रलोभन होने पर व्यक्ति विशेष रूप से सीखने के लिए प्रेरित होता है। यही कारण है कि कुत्ते, बिल्ली, चूहे आदि पर प्रयोग करते समय उन्हें भोजन दिया जाता है। चूंकि भोजन एक प्रलोभन है, इस प्रलोभन में अधिक आकर्षण बढ़ाने के लिए इन पशुओं को भूखा रखा जाता है। भूख उनके अंदर एक आवश्यकता पैदा करती है। इस तरह जब भी व्यक्ति किसी आवश्यकता का अनुभव करता है तो वह प्रलोभन के कारण कठिन विषयों और परिस्थितियों को भी सुलझाना सीख लेता है। नेक्स्ट है परिणाम का ज्ञान। कोई काम सीखते समय थोड़ी थोड़ी देर पर अपनी प्रगति का ज्ञान होने पर सीखना सरल हो जाता है। जैसे मान लीजिए यदि आप 10 बार किसी काम को करें और हर काम करने के बाद आपको बतला दिया जाए कि इस बार आपको इतना समय लगा और इतनी गलतियां हुई, तो आपके अंदर क्या होगा, यह भाव काम करने लगेगा कि अगली बार और भी कम समय लगे और कम से कम गलतियां हो। इस प्रयत्न से जब आप दूसरा प्रयास करेंगे तो निश्चय ही आप कम समय में बिना ही गलती किए वह काम करना सीख जाएंगे। दूसरी ओर जब सीखने वालों को अपने काम के संबंध में कोई ज्ञान नहीं होता तो वह एक निष्क्रियता के शिकार हो जाते हैं और अपनी गलतियां सुधारने के लिए अधिक सक्रिय कोशिश नहीं कर सकता, फलतः उसे सीखने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। इस प्रकार हम देखते हैं सीखने की क्रिया कई कारकों और बातों पर निर्भर करता है।
तो दोस्तों, ऐसे ही हर रोज क्वेश्चन मार्क कार्यक्रम में आप अलग अलग विषयों के शिक्षकों को सुन सकेंगे और नई नई जानकारियाँ ले सकेंगे। इतना ही नहीं, हर माह के अंत में शिक्षक आपसे पूछेंगे कुछ सवाल जिसका सही जवाब देकर आप बन सकते हैं मोबाइल वाणी के स्टार स्टूडेंट। और अगर आपके मन में भी विषय से जुड़ा कोई सवाल हो तो बिना देर किए मोबाइल में दबाए नंबर 3 और रिकॉर्ड करें अपनी बात। और हाँ साथियों, इस कार्यक्रम को लाइक करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। नमस्कार।